नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग सौभाग्य चाहिए कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने AI और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को PM श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो iStart के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नेदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रूपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रूपये की लागत से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को CM राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में AI आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें AI आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है। उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं। इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। जवाहर कला केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक हुई स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। CBI ने आज नीट UG 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।